लीजिए सुनिए रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी जासूस, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मैं पुलिस का जासूस हूं। मेरे जीवन के सिर्फ दो ही लक्ष्य थे, एक मेरी स्त्री और दूसरा रोजगार। पहले मेरा सारा कुनबा एक साथ रहता था और मैं भी उसी में था। बाद में वहां मेरी स्त्री का अनादर सा होने लगा तो मैं भाई साहब से लड़कर अलग हो गया। भाई साहब ही रोजगार करके हम लोगों का भरण पोषण किया करते थे, इसलिए इस तरह सहसा सस्त्री कुन का आश्रय छोड़कर चला आना मेरे लिए दुस्साहस का काम था, इसमें तो कोई शक ही नहीं। लेकिन कभी भी मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं थी। मैं निश्चित जानता था कि जैसे मैंने सुंदरी स्त्री को वश किया था, वैसे मैं विमुख भाग्यलक्ष्मी को भी वश में ला सकता हूं। बंदा महिमचंद्र इस संसार में किसी से भी पीछे नहीं पड़ा रहेगा। पुलिस विभाग में मामूली तौर से घुसा और अंत में जासूस का पद हासिल करने में ज्यादा देर नहीं लगी। उज्ज्वल दीपशिखा से भी जैसे काजल निकलता है, वैसे ही मेरी स्त्री के प्रेम से ईर्ष्या और संदेह की कालिमा निकलती थी, पर उससे मेरे काम में कोई भी हर्ज नहीं होता। बात यह थी कि जासूसी के काम से मुझे जगह जगह जाना पड़ता, उसमें समय असमय का विचार करने से कतई काम नहीं चलता, बल्कि उसमें तो स्थान की अपेक्षा स्थान और समय की अपेक्षा समय ही ज्यादा काम आता, और इससे मेरी स्त्री का स्वभाव सिद्ध संदेह और भी मानो दुर्निवार हो उठता। वो मुझे डराने की गरज से कहा करती, तुम इस तरह जब है तब जहां तहां रह जाया करते हो, कभी कदा मुझसे मिलते हो, मेरे लिए तुम्हें कुछ आशंका नहीं होती। मैं जवाब देता, संदेह करना हमारा रोजगार नहीं, इसीलिए घर में कम से कम उसे मैं नहीं लाता। स्त्री कहती, संदेह करना मेरा भी रोजगार नहीं, मेरा वो स्वभाव है। मुझे तुम रत्ती भर भी संदेह का कारण दोगे तो मैं सब कुछ कर सकती हूं। डिटेक्टिव लाइन में मैं सबसे श्रेष्ठ होऊंगा, मैं अपना एक नाम कायम करूंगा, ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा थी। इस विषय के जितने भी विवरण और कहानी उपन्यास वगैरह मिले मैंने सब पढ़ डाले, लेकिन पढ़ने से सिर्फ मन का संतोष और अधैर्य ही बढ़ता गया। कारण, हमारे देश के अपराधी लोग डरपोक और बेवकूफ हैं, उनके कसूरों में कोई जान नहीं, निहायत सीधे सादे होते हैं। उनमें द्रोहता दुर्गमता वगैरह ऐसे गुण बिल्कुल नहीं होते जिससे कम से कम हम जैसे उत्साही जासूसों को नाम पैदा करने का कोई अच्छा चांस मिले। आदमी के खून बहाने की उत्कट उत्तेजना को हमारे देश के खूनी किसी भी हालत में अपने अंदर दबाकर नहीं रख सकते। जालसाज तो जो जाल फैलाते हैं उनमें वे बहुत जल्द खुद अपने को ही ऊपर से नीचे तक ज्यादा फंसा लेते हैं। अपने कसूरों से निकल भागने का कूट कौशल उन्हें जरा भी नहीं आता। सच तो ये है कि ऐसे निर्जीव देश में जासूसी का काम करके ना तो कोई आराम है और ना कोई गौरव। कलकत्ता के मारवाड़ी जुआ चोरों को बड़ी आसानी से गिरफ्तार करके कितनी ही बार मन ही मन मुझे कहना पड़ा है, अरे अपराधी कुल कलंकियों, दूसरों का सत्यानाश करना गुड़ी उस्तादों का काम है, तुम जैसे अनाड़ी बेवकूफों को तो साधु तपस्वी होना चाहिए था। और खूनियों को पकड़कर भी मेरा मन यही बोल उठा है, अरे मूर्खो, अंग्रेज सरकार का फांसी का तख्ता क्या तुम जैसे गौरवहीन प्राणियों के लिए बनाया गया था? तुम लोगों में ना है उदार कल्पना शक्ति, ना है कठोर आत्मसंयम। तुम नालायक को किस बिरते पर खूनी बनने की हिमाकत करते हो? मैं अपनी कल्पना दृष्टि से जब लंदन और पेरिस के जनाकीर्ण राजमार्गों के दोनों बगल जाड़े की ठंडी हवा से आकुल आसमान चूमने वाले बड़े बड़े मकानों की कतारें देखने लगता तो रोमांचित हो उठता। मन ही मन सोचता, इन ऊंचे ऊंचे महल से मकानों में और सड़कों गलियों में से जैसे जन स्त्रोत, कर्म स्त्रोत, उत्सव स्त्रोत रात दिन बहता चला आ रहा है, वैसे ही सर्वत्र एक हिंसापूर्ण कुटिल कालिमा कुंचित भयंकर अपराध प्रवाह भी तले तले अपनी राह बनाता हुआ दौड़ रहा है। और उसी के पास यूरोपीय सामाजिकता का हास्य कौतुक शिष्टाचार ऐसी विराट भीषण रमणीयता प्राप्त कर रहा है। और एक हमारा कलकत्ता है जिसमें सड़क और गली कूचियों में खिड़की, खुले मकानों में रसोई पानी, घर का काम धंधा, परीक्षा की पढ़ाई, ताश चौसर की बैठक, दाम्पत्य कलह, बहुत हुआ तो भाई भाई में झगड़ा और मामले मुकदमों के विषय की सलाह, इसके सिवा कुछ भी नहीं होता। किसी एक मकान की तरफ देखकर कभी भी ऐसी बात मन में नहीं उठती कि अभी इस घर के किसी एक कोने में जरूर कोई शैतान छुपा हुआ अपने मन के काले काले अंडों को से रहा है। अक्सर मैं सड़कों और गली कूचियों में जाकर राहगीरों का चेहरा और उनके चलने फिरने का ढंग गौर से देखा करता। किसी के हाव भाव में जरा भी संदेह होता तो मैं अक्सर उसका पीछा करता, उसके नाम धाम का पता लगाता और अंत में बड़ी निराशा के साथ आविष्कार करता कि वे निष्कलंक भले आदमी की सिवा और कुछ नहीं। और तो क्या, उनके आत्मीय स्वजन और बंधु बांधव तक उनके खिलाफ किसी तरह का झूठा दोष नहीं लगाते और न बदनामी ही करते। राहगीरों में जो सबसे ज्यादा शैतान सा मालूम हुआ है, यहां तक कि देखते ही निश्चित रूप से ऐसा विश्वास हुआ है कि ये शख्स अभी तुरंत कोई ना कोई भयंकर अपराध करके सीआईडी विभाग की आंखों में धूल झोंकने के लिए बड़ी चतुराई के साथ भेष बदलकर भागा जा रहा है। उसका पीछा करके पूरा पता लगाने पर अंत में मालूम हुआ कि वो बेचारा किसी एक छात्रवृत्ति वाले स्कूल का द्वितीय पंडित है, लड़कों को पढ़ाकर घर जा रहा था। और फिर सोचने लगा, यही सब लोग अगर दूसरे किसी देश में पैदा होते तो प्रसिद्ध चोर डाकू हो सकते थे। एकमात्र हमारा ही देश ऐसा भागा है कि यथोचित जीवन शक्ति और यथेष्ट पौरुष के अभाव में बेचारे जिंदगी भर सिर्फ पंडिताई करके बुढ़ापे में पेंशन पाते और मर जाते हैं। बड़ी भारी कोशिश और काफी खोज करने के बाद उक्त सेकंड पंडित की निरीहता पर मेरी इतनी गहरी अश्रद्धा हुई थी कि थाली लोटा चुराने वाले किसी छोटे से छोटे चोर पर भी उतनी न हुई होगी। एक दिन की बात है, रात के करीब 8-8:30 बजे होंगे, हमारे घर के पास ही देखा कि गैस पोस्ट के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ है और बीच बीच में बेमतलब उत्सुक होकर वो एक ही जगह इधर से उधर चक्कर लगा रहा है। उसे देखकर मुझे जरा भी संदेह न रहा कि वो किसी न किसी गुप्त षड्यंत्र में लगा हुआ है। अपने को अंधेरे में छिपाते हुए मैंने उसका चेहरा खूब अच्छी तरह देख लिया। कम उम्र और देखने में सुडोल सुंदर था। मैं मन ही मन कहने लगा, षड्यंत्र करने की यही तो ठीक अवस्था है, चेहरा भी बिल्कुल अनुकूल पड़ता है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिनका अपना चेहरा ही सबसे बढ़कर खिलाफ गवाह काम करता है, वे सब तरह के अपराधों से बचकर निकलना चाहते हैं। अच्छा काम करके वे निष्फल हो सकते हैं, किंतु बुरा काम करके सफलता पाना भी उनके लिए दुराशा है। देखा कि छोकरे का चेहरा ही उसकी सबसे बड़ी बहादुरी है। इसके लिए बहुत देर तक मन ही मन मैंने उसकी तारीफ की। भीतर से मेरा जी कहने लगा, तारीफ तो तब है जब भगवान ने इसे जो ये दुर्लभ सुविधा दी है उसे ये पूरी तरह काम में लगा सके, तब कहूंगा शाबाश। मैं अंधेरे से निकलकर उसके सामने जा पहुंचा और उसकी पीठ पर एक थपकी जमा कर बोला, कहिए अच्छे तो हैं। वो उसी क्षण जोर से चौंक पड़ा, चेहरा पड़ गया सफेद फक। मैंने कहा, माफ कीजिएगा, गलती हो गई, मैंने समझा था कि। मैंने कुछ भी गलती नहीं की थी, जिसे समझा था वही था वो, लेकिन इतना ज्यादा चौंक पड़ना उसके लिए ठीक नहीं था, इससे मैं ही कुछ दुखित हुआ। अपने शरीर पर उसका और भी ज्यादा दखल होना चाहिए था, लेकिन असल बात यह है कि श्रेष्ठता का पूरा आदर्श अपराधियों में भी मुश्किल से पाया जाता है। चोर को भी सर्वश्रेष्ठ चोर बनाने में प्रकृति कंजूसी किया करती है। मैं फिर उसकी आंखों से ओझल हो गया, देखा कि वो गैस पोस्ट छोड़कर चला गया। मैं उसका पीछा करने लगा, देखा कि चलते चलते वो गोल दिग्घी के बाग में घुस गया और तालाब के किनारे घास पर जाकर चित पड़ रहा। मैंने सोचा कि तरकीब सोचने के लिए जगह हो तो ऐसी हो, कहाँ गैस पोस्ट के नीचे का फुटपाथ और कहाँ उपवन के सरोवर तट की तृणशैया। कोई अगर संदेह भी करे तो ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता है कि लड़का अंधेरे आकाश में प्रेयसी का मुखचंद्र अंकित करके कृष्ण पक्ष की रात की कमी पूरी कर रहा है। कुछ भी कहिए, लड़के के प्रति मेरा मन उत्तरोत्तर आकृष्ट होने लगा। बहुत खोज के बाद मैंने उसके घर यानी प्राइवेट हॉस्टल का पता लगाया। नाम है मन्मथ कुमार, कॉलेज में पढ़ता है, परीक्षा में फेल होकर गर्मियों की छुट्टी में इधर उधर घूम फिर रहा था। उसके हॉस्टल के सहवासी लड़के प्रायः सभी अपने अपने देश चले गए हैं। लंबी छुट्टियों में सभी विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर घर भाग जाया करते हैं। मालूम नहीं इस लड़के के पीछे कौन सा दुष्ट ग्रह पड़ गया है जो छुट्टी नहीं दे रहा है। मैंने तय कर लिया कि किसी भी तरह हो उस दुष्ट ग्रह का पता लगाकर ही छोड़ूंगा। मैं भी विद्यार्थी बनकर हॉस्टल में दाखिल हो गया। पहले दिन जब उसने मुझे देखा तब न जाने कैसे तो उसने मेरे मुंह की तरफ देखा। मेरी कुछ समझ में न आया। ऐसा लगा जैसे वो बड़े भारी ताज्जुब में पड़ गया हो और मेरे मन की बात ताड़ गया हो। मैं समझ गया कि हाँ, है तो शिकारी के लायक शिकार, इसे सीधी तरह से चट से काबू में नहीं लाया जा सकता। लेकिन मज़ा ये कि जब मैंने उसे प्रणय बंधन में बांधना चाहा तो उसने पकड़ाई देने में जरा भी दुविधा नहीं की। मगर मैं ताड़ गया कि वो भी मुझे सुतीक्ष्ण दृष्टि से देखता है, वो भी मुझे जानना चाहता है। मनुष्य चरित्र के प्रति इस तरह का सदा सतर्क सजग कुतूहल होना ये उस्तादों का लक्षण है। इतनी कम उम्र में ऐसी पैनी चतराई देखकर मन ही मन में बहुत ही खुश हुआ। मन में सोचने लगा, हमारे बीच में अब एक रमणी आनी चाहिए, उसके बिना इस असाधारण अकाल धूर्त लड़के का हृदय द्वार खुलना मुश्किल ही है। एक दिन गदगद कंठ से मैंने उससे कहा, दोस्त, आज तुमसे मैं अपनी एक मन की बात कहता हूं। एक लड़की है, उसे मैं बहुत चाहता हूं, पर वो मुझे नहीं चाहती। पहले तो वो कुछ चौंका, फिर मेरे मुंह की तरफ देखकर मुस्कराता हुआ बोला, ये कोई ऐसा हादसा नहीं जो ना होता हो। इस तरह का मजा करने के लिए ही तो कौतुक प्रिय विधाता ने नर नारी का भेद किया है। मैंने कहा, तुमसे मैं सलाह चाहता हूं और मदद भी। वो राजी हो गया। मैंने बना बना कर बहुत सा इतिहास कह डाला। वो आग्रह और कुतूहल के साथ सब सुनता रहा, लेकिन ज्यादा कुछ बोला नहीं। मेरी धारणा थी कि किसी साथी से मोहब्बत की, खासकर इस तरह के गर्हित प्रेम की बात इस तरह दिल खोल कर कही जाए तो उससे गहरी दोस्ती हो जाती है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वर्तमान कार्यक्षेत्र में उसका कोई लक्षण ही नहीं दिखाई दिया। मन्मथ पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा चुपकी साध गया। साथ ही ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरी सब बातें उसने अपने मन में गूंथ के रख ली हों। लड़के पर मेरी इतनी ज्यादा श्रद्धा हो गई कि जिसकी हद नहीं। इधर मन्मथ रोजमर्रा दरवाजा बंद करके क्या क्या गुप्त कार्रवाई करता रहता है और उसका षड्यंत्र किस तरह कहाँ तक आगे बढ़ रहा है, मैं इसका कुछ पता न लगा सका। और इसमें कोई भी संदेह नहीं कि जरूर वो आगे बढ़ रहा है। उसका चेहरा देखते ही ये बात साफ समझ में आ जाती कि वो किसी गहरे मामले में लगा हुआ है और वो मामला अब बिल्कुल पक चुका है। मैंने डुप्लीकेट चाबी बनाकर उसका डेस्क खोलकर देखा है। उसमें एक अत्यंत दुर्बोध कविताओं की कॉपी, कॉलेज के लेक्चरों के नोट्स और घर वालों की मामूली चिट्ठियों के सिवा और कुछ भी नहीं मिला। घर की चिट्ठियों में सिर्फ इतना ही पता चला कि घर वाले उसे देश आने के लिए हर चिट्ठी में बार बार अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी वो जा नहीं रहा है। आखिर क्यों? इसका जरूर कोई जबरदस्त कारण होगा। अगर वो न्याय संगत होता तो जरूर किसी न किसी दिन आपस की बातचीत में उसका पर्दाफाश होता। लेकिन बात बिल्कुल उल्टी थी और इसीलिए उस छोकरे की गतिविधि और इतिहास मेरे लिए इतना ज्यादा औत्सुक्यजनक हो उठा कि जिसका ठीक नहीं। जिस असामाजिक मनुष्य संप्रदाय ने सुरंग में छिपकर इस महान मनुष्य समाज को हमेशा नीचे की तरफ से हिला रखा है, ये बालक उसी विश्वव्यापी अति प्राचीन महान जाति का एक अंग है। ये कोई मामूली स्कूल का छात्र नहीं, ये संसार की छाती पर विहार करने वाली सत्यानाशनी का प्रलय का सहचर है। आधुनिक काल का चश्मा पहनकर निरीह छात्र के भेष में कॉलेज में पढ़ रहा है। अगर ये नर मुंडधारी कपालिक के भेष में रहता तो उसकी भैरवता मेरे लिए और भी भयंकर नहीं होती। सचमुच मेरी उस पर काफी श्रद्धा हो गई। अंत में साशरीरा रमणी की अवतारणा करनी पड़ी। पुलिस की वेतनभोगी हरिमती मेरी सहायक हुई। मन्मथ को मैंने कह दिया कि मैं इसी हरिमती का अभागा प्रेमी हूं और हरिमती को लक्ष्य करके कुछ दिनों तक मैं उसके साथ गोल दिग्घी जा जाकर तालाब के किनारे घास पर बैठकर गदगद कंठ से चांद तू है चांदनी है कविता बार बार पढ़ता रहा और हरिमती भी कुछ भीतर से और कुछ हाव भाव से जताती रही कि उसने अपना हृदय मन्मथ को दे दिया है। लेकिन आशानुरूप कुछ भी फल नहीं हुआ। मन्मथ दूर से ही निर्लिप्त होकर कौतुक के साथ सब कुछ देखता रहा। इसी बीच में एक दिन दोपहर के वक्त देखा कि उसके कमरे के कोने में एक फटी हुई चिट्ठी पड़ी है। मैंने सब टुकड़ों को उठाकर उन्हें यथास्थान जोड़कर पढ़ने की कोशिश की, पर सिर्फ इतना ही अधूरा वाक्य पढ़ने में आ सका। आज शाम के बाद 7 बजे छिपकर मैं तुम्हारे यहां। बाकी का हिस्सा ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की पर मिला नहीं। फिर भी मेरा अंतःकरण पुलकित हो उठा। जमीन में से किसी विलुप्त वंश के प्राचीन प्राणी का एक हाड़ मिल जाने पर जीव तत्व के इतिहासकार की कल्पना जैसे आनंद के मारे सजग हो उठती है, मेरी भी ठीक वैसी ही हालत हो गई। मुझे मालूम था कि आज रात को 10 बजे हमारे यहाँ हरिमती के आने की बात है। इस बीच में 7 बजे का ये मामला कहाँ से आने वाला है। लड़के की हिम्मत और बुद्धि की तारीफ करनी पड़ेगी। सचमुच अगर किसी गुप्त अपराध का काम करना हो तो घर में जिस दिन कोई खास झंझट हो उसी दिन मौका देखकर करना ही अच्छा है। इसमें पहली बात तो ये है कि मुख्य विषय पर लोगों का ध्यान आकृष्ट रहता है। दूसरे, जिस दिन जहां कोई खास बात होने वाली हो उस दिन वहां कोई जानबूझकर गुप्त कार्रवाई करेगा, ये बात किसी के दिमाग में ही ना आएगी। सहसा मेरे मन में संदेह हुआ कि मेरे साथ इस नई मित्रता और हरिमती के साथ इस प्रेमाभिनय को भी मन्मथ ने अपनी कार्य सिद्धि का जरिया कर लिया है। यही वजह है कि ना तो वो अपने को हम में मिलाता ही है और ना अलग ही करता है। वो समझ गया है कि हम लोगों का आचरण उसकी गुप्त कार्रवाइयों के लिए पर्दा का काम कर रहा है और इससे और सबों की यही धारणा रहेगी कि वो हम ही लोगों को लेकर व्यस्त है और इस भ्रम को वो दूर नहीं करना चाहता। अब जरा युक्तियों पर भी गौर कीजिए। जो परदेशी विद्यार्थी छुट्टियों में अपने घर वालों के अनुनय विनय की जरा भी परवाह न करके सूने हॉस्टल में अकेला पड़ा रहता है, उसके विषय में किसी को भी ये संदेह नहीं हो सकता कि निर्जन स्थान की उसे खास जरूरत है और मैं उसके कमरे में आकर उसकी निर्जनता को नष्ट कर रहा हूं और ऊपर से एक महिला को लाकर एक तरह का नया उपद्रव ही खड़ा कर रहा हूं। मगर फिर भी वो नाखुश नहीं होता और ये बिल्कुल सच है कि हरिमती पर उसकी रंच मात्र भी आसक्ति नहीं और न मुझसे कोई खास दिलचस्पी है। और तो क्या, मैंने उसकी सदा सतर्क अवस्था का बार बार अध्ययन करके यही पाया है कि हम दोनों के प्रति उसकी घृणा क्रमशः मानो बढ़ती ही जाती है। इसका एकमात्र तात्पर्य यही है कि सजनता की सफाई रखते हुए निर्जनता की सहूलियत पाना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका है मुझ जैसे नवपरिचित आदमी को पास रखना और किसी भी विषय में एकाग्र मन से लिप्त होने के लिए महिला से बढ़कर आसान बहाना और कुछ हो ही नहीं सकता। इसके पहले मन्मथ का आचरण जैसा निरर्थक और संदेहजनक था, हमारे आगमन के बाद फिर वैसा नहीं रहा। लेकिन इतनी दूर की बात चुटकियों में सोचकर तय कर लेना आसान काम नहीं। उसकी इस विलक्षण उपस्थित बुद्धि को देखकर मैं मुग्ध हो गया। सोचने लगा, हमारे देश में ऐसे ऐसे दूरदर्शी प्रत्युत्पन्न मती बालक भी पैदा होते हैं। मारे उत्साह के मेरा हृदय भर आया। मन्मथ अगर कुछ ख्याल न करता तो शायद मैं उसे दोनों हाथों से खींचकर अपनी छाती से लगा लेता। उस दिन मन्मथ के साथ भेंट होते ही मैंने उससे कहा, आज शाम को 7 बजे मैंने तुम्हें होटल में खिलाने पिलाने का निश्चय किया है। सुनकर वो कुछ चौंक सा पड़ा, बाद में अपने को संभाल कर बोला, आज माफ करो भाई, मेरी पाकस्थली की हालत आज बड़ी शोचनीय है। होटल का खाना खाने में मन्मथ की अभिरुचि को कभी भी किसी कारण से विमुख होते नहीं देखा। फिर आज क्या बात है? मैं फौरन ताड़ गया कि आज उसकी अंतरिंद्रिय जरूर किसी द्रुह दशा में उलझी हुई है। वैसे मैं शाम तक हॉस्टल में नहीं रहता, मगर उस दिन मैंने बातों का ऐसा तांता बांध दिया कि उठने का मौका ही नहीं आने दिया। मन्मथ भीतर ही भीतर अत्यंत चंचल होने लगा। मेरी हर बात पर उसने सन्मति देना शुरू कर दिया, किसी तर्क का कुछ भी जवाब नहीं दिया और अंत में घड़ी की तरफ देखकर व्याकुल चित्त से खड़ा होकर बोला, हरिमती को आज लाने नहीं जाना है क्या? मैंने चौंककर कहा, अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। अब एक काम करो, तुम खाना वाना बनाकर तैयार रखो, मैं ठीक 10:30 बजे उसे यहां ले आऊंगा। और उठ के चल दिया। खुशी का एक नशा सा मेरे रग रग में दौड़ने लगा। शाम के 7 बजे पर मन्मथ की जितनी और जैसी उत्सुकता थी, मेरी उत्सुकता उससे किसी भी हालत में कम नहीं थी। मैं हॉस्टल के पास ही एक जगह छिप गया और प्रेसी समागमोत्कंठित प्रणयी की तरह क्षण क्षण में घड़ी देखने लगा। गोधूली का अंधकार जब क्रमशः घना हो आया और सड़कों की बत्तियां जलने लगीं, तब देखा कि एक बंद पालकी हॉस्टल के दरवाजे से भीतर घुस रही है। आखिर उस बंद पालकी के अंदर क्या है? आंसुओं में डूबा हुआ एक घूंघटशुदा पाप, एक मूर्तिमती ट्रेजडी कॉलेज के छात्र निवास में कुछ उड़िया बाहकों के कंधे पर सवार होकर हाई हुई बोलती हुई इतनी आसानी से घुसी जा रही है। कल्पना करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए और सारे शरीर में एक तरह का अपूर्व पुलक का संचार होने लगा। फिर मुझसे रहा नहीं गया, समय नष्ट न करके तुरंत मैं हॉस्टल में घुसा और धीरे धीरे सीढ़ी तय करके ऊपर पहुंच गया। इच्छा थी कि छिपकर सब देखता रहूंगा, पर दुर्भाग्यवश मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। कारण मन्मथ सीढ़ी के सामने वाले कमरे में ही इधर ही को मुंह किए बैठा था और दूसरी तरफ बैठी थी एक घूंघट वाली नारी। दोनों मृदु मंद स्वर में बातें कर रहे थे। जब देखा कि मन्मथ ने मुझे देख लिया है तो जल्दी से कमरे में जाकर मुझे कहना ही पड़ा, टेबल पर घड़ी पड़ी छोड़ गया था सो लेने आया हूं। मन्मथ ऐसा भौचक्का सा हो गया कि जिसका ठीक नहीं, मालूम हुआ अभी गश खाकर जमीन पर गिर जाएगा। मैं कौतुक और खुशी में फूला न समाया, व्यग्रता के साथ बोला, क्यों ऐसे क्यों हो गए, तबीयत कुछ खराब है क्या? उसे कुछ जवाब देते न बना। तब फिर मैंने कठपुतली सी स्थिर बैठी हुई इस घूंघट वाली नारी की तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप मन्मथ की कोई लगती हैं क्या? कुछ भी उत्तर नहीं मिला, लेकिन देखा कि वे मन्मथ की कोई भी नहीं लगती, मेरी ही स्त्री लगती हैं। उसके बाद क्या हुआ सो सभी जान सकते हैं। बस यही है मेरे जासूसी जीवन की पहली तारीफ। कुछ देर बाद मैंने अपने जासूस साथी महेमचंद्र से कहा, मन्मथ के साथ तुम्हारी स्त्री का संबंध समाज विरुद्ध नहीं भी हो सकता है। महेम ने कहा, बात तो ऐसी ही है, मेरी स्त्री के बकस में से मन्मथ की ये चिट्ठी मैंने ढूंढ निकाली है। कहते हुए एक चिट्ठी उसने मेरे हाथ में दी जो नीचे उद्यत की जाती है, सुचरितासु, अभागे मन्मथ की बात इतने दिनों बाद तुम शायद भूल गई होंगी। बचपन में जब मैं अपनी ननसाल काजीबाड़ी जाता था तब अक्सर वहां तुम्हारे घर जाकर मैं तुमसे तरह तरह के खेल खेला करता था। हम दोनों का वो खेल घर और खेल का संबंध आज टूट चुका है। तुम जानती हो या नहीं मैं नहीं कह सकता। एक समय था जब धीरज का बांध तोड़कर और हया शर्म की खोपड़ी फोड़कर मैंने तुमसे ब्याह करने का इरादा जाहिर किया था और उसके लिए काफी कोशिश भी की थी, लेकिन तुम्हारी हमारी उम्र एक सी होने से दोनों पक्ष के बुजुर्ग किसी भी हालत में इस संबंध के लिए राजी नहीं हुए। उसके बाद तुम्हारा ब्याह हो गया, चार पांच साल तक तुम्हारी कुछ खबर ही न पा सका। आज पता चला कि तुम्हारे पति पुलिस में काम करते हैं और 5 महीने हुए यहीं कलकत्ता में उनका तबादला हुआ है और आज ही मैंने तुम्हारे घर का पता लगा लिया। तुम्हारे साथ मिलने की दुराशा मैं नहीं रखता और ये अंतर्यामी ही जानते हैं कि तुम्हारे गार्हस्थ सुख में एक ऊधम की तरह घुस पड़ने की साजिश भी मेरे मन में नहीं है। शाम के वक्त तुम्हारे घर के सामने वाले फुटपाथ पर एक गैस पोस्ट के नीचे सूर्योपासक की तरह मैं खड़ा रहता हूं और तुम रोज नियमित रूप से ठीक 7:30 बजे अपने ऊपर के दक्षिण के कमरे में एक मिट्टी के तेल की बत्ती जलाकर खिड़की के सामने रखती हो। उस समय क्षणभर के लिए तुम्हारी दीपालोकित प्रतिमा मेरी आंखों में उद्भासित होकर समा जाती है। बस तुम्हारे विषय में मेरा सिर्फ यही एकमात्र अपराध है। इस बीच में घटनाचक्र से तुम्हारे पति के साथ मेरा परिचय हो गया और क्रमशः घनिष्ठता भी हो चुकी है। उनका चरित्र जैसा मैंने देखा उससे समझना मुश्किल न रहा कि तुम्हारा जीवन सुखी नहीं है। तुम पर मेरा किसी तरह का सामाजिक अधिकार नहीं है, किंतु जिस विधाता ने तुम्हारे दुख को मेरे दुख में परिणत कर दिया है खुद उन्हीं ने उस दुख को दूर करने का भार मेरे ऊपर छोड़ दिया है। इसलिए मेरी गुस्ताखी माफ करके शुक्रवार शाम को ठीक 7 बजे गुप्त रूप से पालकी में बैठकर एक बार 20 मिनट के लिए मेरे हॉस्टल में आ सको तो मैं तुम्हें तुम्हारे पति के संबंध में कुछ गुप्त बातें बताना चाहता हूं। अगर विश्वास न हो या सहन न कर सको तो इस विषय के सबूत भी मैं तुम्हें दिखा सकता हूं और साथ ही कुछ सलाह भी मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मैं भगवान को हृदय में रखकर आशा करता हूं कि उस सलाह के अनुसार चलने से एक ना एक दिन तुम जरूर सुखी हो सकोगी। मेरा उद्देश्य बिल्कुल ही निस्वार्थ हो ऐसा मैं नहीं कह सकता। क्षण भर के लिए मैं तुम्हें सामने देखूंगा, तुम्हारी बात सुनूंगा और तुम्हारे चरणों के स्पर्श से अपनी इस कोठरी को हमेशा के लिए सुख स्वप्न से भर दूंगा। बस इतनी सी अभिलाषा मेरे हृदय में है। अगर तुम मुझ पर विश्वास न कर सको और इतने से सुख से भी मुझे वंचित करना चाहो तो वैसा लिख भेजना, मैं उसके उत्तर में सब बातें चिट्ठी में ही लिख भेजूंगा। और अगर चिट्ठी लिखने का विश्वास न हो तो मेरा ये पत्र ही तुम अपने पति को दिखा देना। उसके बाद मुझे जो कुछ कहना है सोन ही से कह दूंगा। नित्य शुभाकांक्षी मन्मथ कुमार मजूमदार। अभी आप सुन रहे थे रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी जासूस, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।